ओम शांति एंड गुड आफ्टरनून। आप लोग सवेरे से, इनफैक्ट कल से आप सभी लोग सुन रहे हैं, तो अब जो सेशन होगा उसमें केवल सुनना नहीं, आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना होगा। और आप लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें लगे कि आप भी हमारे साथ हैं। तो इसलिए बढ़िया से प्यार से बोलेंगे गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू। तो एक बारी की बात है कि एक कुम्हार और एक मिट्टी के बीच में बात हो रही थी। तो हुआ ये कि कुम्हार ने एक बहुत सुंदर चिलम बनाई। उस चिलम को बनाकर उसके मन में ना जाने क्या आया कि उसने उस चिलम को तोड़ दिया। तो मिट्टी उसके साथ जो थी वो बोली कि भैया एक बात बताओ, आपने इतनी सुंदर चिलम बनाई, आपने इसको तोड़ क्यों दिया? तो उसने कहा कि ये चिलम मेरी माटी, मेरी मति बदल गई। तो माटी मुस्कुराते हुए उस कुम्हार से बोली कि भैया तुम्हारी तो माटी दिमाग बदला, मन बदला, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। तो कुम्हार ने कहा कि अब मैं चिलम नहीं, मैं एक सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी मुस्कुराते हुए बोली कि पहले तुम चिलम बनाते तो मैं खुद भी जलती और औरों को भी जलाती, अब तुम सुराही बनाओगे तो अब मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतलता दूंगी। और यही हम सबकी जीवन की कहानी है। क्यों? क्योंकि जैसे हम अपने विचारों को अपने समक्ष रखते हैं, जैसा हमारा मन जिस तरह चलता है उसी तरह हमारा जीवन आता जाता है। आप अभी सिस्टर शिवानी को सुन रहे थे कि सारी बात हमारे मन पर ही केंद्रित हो जाती है। एक बारी एक बहुत बड़ा तीरंदाज था, नवयुवक था, उसने हजारों लोगों को जगह जगह हराया। लेकिन जैसे जैसे वो प्रतियोगिताएं जीतता गया उसके मन में अभिमान आता गया, उसे लगा कि अब उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो एक दिन एक व्यक्ति ने उससे कहा कि ऐसा है, तुम अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज समझते हो, एक जेन मास्टर है जंगल के अंदर, जाके उसे हराओ तो हम माने। तो वो तीरंदाज, वो नवयुवक अपने अभिमान के अंदर उस मास्टर के पास गया और उससे बोला कि क्या आप मुझसे प्रतियोगिता करेंगे, मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज हूं। तो उसने कहा हाँ बेटा जरूर करते हैं। तो उस नवयुवक ने अपना तीर उठाया और तीर उठाकर एक निशाने पर लगाया और वो बिल्कुल एक्यूरेट जाकर लगा। उसके बाद वो देखकर मास्टर को मुस्कुराने लगा। फिर उसने एक और तीर निकाला और उस अगले तीर को, पुराने तीर को भेदता हुआ फिर निशाने पर जाकर वो लगा और उस मास्टर को बोला कि क्या आप ऐसा कर सकते हो? तो मास्टर मुस्कुराता हुआ बोला कि मैं कर तो सकता हूं। तो कहता है कि करके दिखाओ। तो मास्टर ने भी किया। फिर तीरंदाज ने बोला कि क्या आप इससे भी कुछ सर्वश्रेष्ठ कर सकते हो? तो मास्टर जो कि बूढ़ा व्यक्ति था मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा तुम जरा मेरे साथ चलो। तो वो उसके साथ चल पड़ा। एक खाई आई, जंगल के अंदर वो गए। तो वहां जैसे जा रहे थे रास्ता बहुत दुर्गम था, तो वो जो तीरंदाज था, नवयुवक था, उसका जी घबराने लगा कि ऐसी जगह वो कभी आया नहीं था। खाई के बीच में, दो पहाड़ों के बीच में, पतला सा टूटा फूटा सा पुल था जो कि हिल रहा था। वो मास्टर जो था, वो बूढ़ा व्यक्ति, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से उसके ऊपर चलने लगा। तो तीरंदाज नवयुवक बोला कि आप कहां ले जा रहे हो? तो उसने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो, तुम मेरे साथ चलो। बीच पुल के अंदर जाकर उस मास्टर ने अपना तीर निकाला और तीर निकालकर एक्यूरेट निशाना एक पेड़ पर लगाया और उस नवयुवक की तरफ देखकर बोला कि बेटा अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो यहीं पर खड़े हुए जिस पेड़ को मैंने भेदा है उसी को भेद कर तुम दिखाओ। तो वो नवयुवक एकदम कांपने लगा क्योंकि पुल हिल रहा था। उसने जैसे तैसे अपना तीर निकाला और निकालकर जैसे ही निशाना साधा, वो निशाना कहीं आसपास भी वो तीर वो नहीं उसके पास पहुंचा। तो नवयुवक उसके चरणों में गिरकर माफी मांगते हुए बोला कि मैंने अपनी हार आपसे मान ली। तो मास्टर मुस्कुराते हुए उसको उठाकर गले से लगाकर बोला, और ध्यान से सुनिए क्या बोला, कि कहता है बेटा तुमने धनुष और बाण की विद्या को तो बहुत तरीके से अपनी निपुणता हासिल की है, यू आर वेरी एक्यूरेट इन डीलिंग विद योर बो एंड एरो, लेकिन जो मन तुम्हारे धनुष और बाण को कंट्रोल करता है उस पर तुम अभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाए हो। तभी साधारण परिस्थिति में तो तुम किसी भी परिस्थिति को, किसी भी लक्ष्य को हासिल कर लेते हो, लेकिन जब कठिनाई तुम्हारे सामने आती है तब तुम अपने लक्ष्य को भेदने में असफल होते हो। और यही हम सबके साथ लाइफ के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम सब लोग सिचुएशंस पर विजय पा लेते हैं, होता है नहीं? यस और नो बताइए। कभी कभी हम जीत भी जाते हैं, हम लोग कहते हैं वाह देखो हमने ये कार्य कर लिया। कभी कभी कोई नेगेटिव सिचुएशंस भी आती हैं, उनको भी हम लोग डील कर लेते हैं। लेकिन कभी जब हमारी लाइफ बहुत टर्बुलेंस में होती है, तब हमारी योगी स्थिति का, तब हमारी बैलेंस मेडिटेटिव लाइफ का असली इम्तिहान होता है। तभी तो होगा ना, क्योंकि हिमालय पर जाकर तो किसी को भी शांति मिल जाएगी, लेकिन हम अपने कार्य व्यवहार में रहते हुए जो कार्य हम कर रहे हैं, जैसे आप सर्जन हैं तो आप सर्जरी कर रहे हैं, जब आप कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी कर रहे हैं या कोई कॉम्प्लेक्स पेशेंट को डील कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स के अंदर भी हम अपने मन का संतुलन बिल्कुल एक्यूरेट बना के रखें, यही आज के समय में हमें निपुणता हासिल करनी है। एंड दैट इज व्हाट वी आर हेयर फॉर, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशंस में वी ऑल आर इमर्जिंग विनर्स, हम सब लोग जीत जाते हैं, लेकिन जब परिस्थिति हमारे सामने आती है तो क्या हमारी स्वस्थिति वो इतनी पावरफुल होती है कि हम उस परिस्थिति को भी जीत सकते हैं, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है। और इसको बहुत स्पष्ट रूप से आप स्वयं ही अपनी लाइफ में आंसर अभी करेंगे, इसलिए मैं अगले आधे पौने घंटे के अंदर आपसे केवल एक अनुरोध करूंगा कि हम लोग एक बड़ी अनोखी यात्रा पर चलेंगे, बहुत अनोखी यात्रा। ये हम सबकी यात्रा होगी, चाहे हम आगे बैठे हैं चाहे हम लास्ट में बैठे हैं, हर व्यक्ति इस यात्रा का विश्लेषण करेगा और पार्टिसिपेट करेगा, और आपको अपने जीवन का सहज उत्तर ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। आप कहेंगे ओहो, एक छोटी सी बात मुझे मालूम थी, मैंने अपनी लाइफ को फिर कॉम्प्लिकेटेड मैं करता गया। कैन आई हैव द स्लाइड्स प्लीज। तो हम देखें कि हम सब लोग यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं। आई विल बी नरेटिंग द स्टोरीज ऑफ थ्री ट्रुथ्स एंड थ्री ट्रांसफॉर्मेशन इन अवर लाइफ, जीवन की तीन सच्चाइयां और जीवन के तीन परिवर्तन जो हम अगर आज करते हैं तो हमारा जीवन एक योगी जीवन, एक बैलेंस्ड जीवन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जब भी हम यात्रा जाते हैं तो हम लोग यात्रा को बड़ा एंजॉयमेंट होता है, बहुत खुशी हमें होती है, लेकिन अगर हम यात्रा में इस तरह जाएं कि कुछ ऐसा बर्डन हम लेकर जाएं, हम लोग बोझा लेकर जाएं, तो क्या हम अपनी यात्रा को एंजॉय करेंगे या नहीं, बताइए, हाँ या नहीं? नहीं करेंगे। तो हम लोग यात्रा पर जब भी जाते हैं हम खुशी से जाना चाहते हैं, हम कहते हैं भाई लाइट ट्रेवल करना, ज्यादा बोझा नहीं कैरी करना, क्योंकि तुम्हें खुद ही उठाना पड़ेगा। तो मैं आपके समक्ष एक सिचुएशन देता हूं कि हम सब लोग डिसाइड करते हैं कि कल संडे है, हम सब लोग यहां से, हमारा बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स है, खेत है वहां पर तपोवन, वहां हम सब लोग पिकनिक पर चलेंगे, सब लोग पिकनिक पर चलेंगे। हम लोग तीन चार बसेस करते हैं, 800-900 लोग हैं, आपस में हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एंजॉय करते हुए जाएंगे, आपस में खाएंगे पिएंगे, पिकनिक का सामान हम अरेंज करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे भी, बीच में समय मिला तो अंतराक्षणी भी खेलेंगे और एंजॉय करते हुए हम वहां पर पहुंचेंगे। कैसा आइडिया लगा? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, यस और नो? यस, वंडरफुल वंडरफुल, हम लोग सब साथ जाएंगे, है ना? तो कितनी खुशी हमारे जीवन के अंदर ऑटोमेटिकली आई। अब आता है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। अब उस ट्विस्ट पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं कहता हूं कि चलिए कल तो हम लोग सब साथ जा रहे हैं, ऐसा करते हैं साथ नहीं जाते, कल भी हम लोग सब वहीं जाएंगे जहां हम पहले जा रहे थे पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन कल हम लोग एक दूसरे से रेस लगाएंगे, हम लोग रेस लगाएंगे उसी जगह पर जाने के लिए कि कौन वहां पर पहले पहुंचेगा। इकट्ठे नहीं जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, लेकिन रेस लगाएंगे। क्या क्या थॉट्स आपके मन के अंदर आने लग गए, बताइए, बताइए ना, पार्टिसिपेट प्लीज, बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक। हाँ, फर्स्ट नंबर, वो कहते हैं जैसे ही उन्होंने कहा मेरे अंदर कंपटीशन की फीलिंग आने लगी, आई या नहीं आई, बोलिए। स्ट्रेस आने लगा, पहले हम जब लोग इकट्ठे जा रहे थे तो हमारी लाइफ में क्या आया, एंजॉयमेंट आई, सब लोगों ने ताली बजाई। अब सिस्टर बोलती हैं जैसे ही हमने कहा हम लोग रेस लगाएंगे तो हमारी लाइफ के अंदर क्या हुआ, स्ट्रेस आया। और बताइए जी, बिल्कुल ठीक, और बताइए, सॉरी, हार तो नहीं जाएंगे, रेस लगाएंगे, कंपटीशन की फीलिंग आई, साथ में एक डर भी आ गया कि क्या मैं हार ना जाऊं, क्या ऐसा नहीं फीलिंग आई कि मुझे उसको हराना है किसी भी तरह, ये कंपटीशन की फीलिंग आई, यस और नो, बताइए। जो एंजॉयमेंट था हमारे साथ जाने का,
सब लोग बताइएगा, जो इंजॉयमेंट हमारे साथ जाने का था, जैसे ही मैं अपने वर्ड साथ को रेस में कन्वर्ट कर देता हूं। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। जर्नी वही है, स्थान वही है, यात्रा पाथ मार्ग भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी जर्नी को एक रेस में कन्वर्ट कर दिया। खुशी रहेगी या नहीं? हाँ या नहीं बताइए। नहीं रहेगी, खुशी गायब हो गई, स्ट्रेस आता चला जाएगा, साथ में हम एक दूसरे को हराने की भी कोशिश करेंगे। जब हम लोग रेस लगाते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि एक व्यक्ति को गलत तरीके से ओवरटेक करके उसको जीतने की कोशिश करेंगे, यस और नो? उस रेस के अंदर कभी कभी हम लोग एक्सीडेंट्स के प्रोन होंगे या नहीं? हाँ या नहीं बताइए, पीछे वाले भी। बिल्कुल नेचुरली होंगे। हाँ, जब लाइफ में उस रेस के अंदर ट्रैफिक सिग्नल आएगा, रेड लाइट आई, लेकिन हम लोग इकट्ठे नहीं जा रहे, हम लोग रेस लगा रहे हैं, हम लोग देखकर उन ट्रैफिक सिग्नल्स का उल्लंघन करेंगे या नहीं? यस और नो? यस करेंगे। लाइफ में से खुशी को हमने क्या किया? गायब कर दिया। लेकिन हमने क्या किया? केवल एक शब्द के परिवर्तन से। इट्स अ चेंज ऑफ ओनली वन वर्ड दैट चेंजेस द होल क्वालिटी ऑफ माय लाइफ, एंड नॉट ओनली माय लाइफ, माय ओन थॉट प्रोसेस। मेरा मन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया। दैट इज वर्ड इज रेस। मैं अपनी जिंदगी में रेस लगा रहा हूं। जैसे हम रेस लगाते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ जा रहे हों और साथ जाते हुए बच्चे और वाइफ बोले कि रुकिए जरा दो मिनट के लिए, नाश्ता कर लेते हैं, हाँ साथ में पिकनिक कर लेते हैं, रुक जाते हैं, तो आप रुकेंगे, गाड़ी को ब्रेक लगाएंगे या नहीं बताइए? अरे छोड़ो, कौन सी, मुझे तो जीतना है, मुझे जाकर पहले वहां पर पहुंचना है। तो नॉट ओनली दैट, मेरी होल जर्नी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म, क्वालिटी ऑफ जर्नी खत्म हो जाती है, और मेरी लाइफ के अंदर स्ट्रेस आ जाता है। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू ईच वन ऑफ अस टुडे। हमारी पूरी लाइफ, स्लाइड्स प्लीज, कॉम्प्लिकेट होती गई है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड जर्नी के अंदर जो पहली सच्चाई मेरे जीवन के अंदर आती है, जो हमें समझनी है, कि लाइफ इज नॉट अ रेस। जब भी मैं अपने जीवन को एक रेस के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं, तो नेचुरली मेरे जीवन के अंदर खुशी गायब हो जाती है। आज हम डॉक्टर्स हों या किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में हों, कोई भी कार्य हम कर रहे हों, लेकिन आज हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रेस और बाय चॉइस हमारी लाइफ के अंदर तनाव क्यों आता है? क्योंकि मैंने बाय चॉइस अपनी लाइफ को एक रेस के अंदर कन्वर्ट किया है। कैसे कन्वर्ट किया है? कि सवेरे उठते ही बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सलेटर दबता है और रात को आके ब्रेक लग जाता है एल्प्रेक्स की गोली के साथ। हाँ, सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अच्छा ताली बजा रहे हैं, किसके लिए बजा रहे हैं? सब लोग बजा रहे हैं कि हाँ भाई यही कहानी है, हर व्यक्ति सवेरे से लेकर शाम तक भाग रहा है। कभी होता है नहीं लाइफ में कॉम्प्लिकेशन महसूस होती है नहीं बताइए? कभी थक जाते हैं नहीं? होता है नहीं बताइए ना। चाहे डॉक्टर्स भी हों, चाहे मरीज भी हों, डॉक्टर्स भी ऐसे होंगे कि इतना स्ट्रेस लाइफ के अंदर होगा, मैं रात को 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, लोग कहेंगे बहुत बिजी डॉक्टर है या बहुत बिजी व्यक्ति है, रात को 2 बजे तक कभी समय नहीं है। आप बताइए, ऐसी जिंदगी, ऐसी रेस का क्या फायदा जिसमें हम लोग अपने लिए भी समय, अपने 2 पल के भोजन के लिए भी हम समय ना निकाल पाए, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? और तभी मैं बोलता हूं, स्लाइड्स प्लीज, कि आज हमारी जिंदगी जो है, वी हैव टर्न्ड इनटू पीपल, वी आर नॉट पीपल बट वी हैव टर्न्ड इनटू प्रोग्राम्ड डिवाइसेस। कंप्यूटर की तरह जैसे चाबी भर दी जाती है ना, कि चलो घर से निकल जाओ, इंजन भर दिया, नाश्ता कर लिया, अब निकल के रॉबर्ट की तरह हम जाएंगे अपने कार्य पर करेंगे, और फिर जैसे सिस्टर आपको बता रही थी, भाव स्वभाव में आएंगे, किसी से लड़ेंगे, किसी से टकराव लेंगे, किसी के लिए अपने मन में कुछ ग्रजेस कैरी करेंगे, किसी को ऊंचा बोलेंगे, किसी को प्यार देंगे, थकेंगे, कभी हंसेंगे, फिर मोबाइल को अपडेट करेंगे, फिर घर आकर फिर वही चक्रव्यूह, फिर वही बात, फिर वही कॉम्प्लिकेटेड लाइफ अगले दिन स्टार्ट हो जाती है। होता है सभी के साथ या नहीं होता? ऑनेस्टली बताइए। सभी के साथ होता है। और फिर हम कहते हैं हम चेंज करें। हम चेंज कैसे करेंगे? जब तक हम अपने जीवन के अंदर ठहराव नहीं लाते, जब तक हम अपने मन के अंदर ठहराव नहीं लाते तो हम चेंज कैसे करेंगे? चेंज कौन करेगा? दूसरा व्यक्ति करेगा या हमें करना है? बताइए, सवेरे से हम सुन रहे हैं चेंज हमें करना है ना। एक हथौड़ा और एक चाबी के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो हथौड़ा चाबी से बोला कि मेरे अंदर तुमसे कई गुना ज्यादा शक्ति है, मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता हूं इस ताले को खोलने के लिए, पर ये ताला खुलता ही नहीं है। तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है चाबी कि तुम इतनी हल्की होते हुए भी एक सेकंड के अंदर इस ताले को खोल देती हो? तो चाबी मुस्कुराते हुए बोली कि भैया, तुम अपनी सारी शक्ति का उपयोग बाहर से करते हो, मैं चाबी अंदर जाकर ताले के थोड़ी सी शक्ति लगाती हूँ और सही जगह पर जब परिवर्तन करती हूँ अंदर से, तो वो ताला क्या होता है? खुल जाता है। तो इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर परिवर्तन करना चाहते हैं, तो परिवर्तन दूसरे व्यक्ति में देखना बहुत अच्छा भी लगता है, हमें भी अच्छा लगता है और बहुत आसान भी लगता है। लेकिन क्या दूसरा व्यक्ति कभी चेंज हो सकता है? आप बताइए, नहीं हो सकता। लोग कहते हैं, अरे आप रहने दीजिए, मैंने जिंदगी के 10 साल लगा दिए इस व्यक्ति को चेंज करने में, बट ये व्यक्ति चेंज नहीं होने वाला। और हम लोग ब्रह्मा कुमारीज में क्या बोलते हैं कि भाई, जिंदगी के 10 साल आपने उस व्यक्ति को चेंज करने में लगा दिए, आप केवल 10 मिनट अपने आप को चेंज करने में लगा दीजिए, तो आप भी खुश रहेंगे और दूसरा व्यक्ति भी क्या होगा? खुश होगा। तो हमें अगर परिवर्तन करना है, अगर हमें परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले हमें अपने मन के अंदर परिवर्तन करना होगा, अपने मन के अंदर चेंज हमको लाना होगा, वरना यही भागती हुई लाइफ हमारी निकल जाएगी। सवेरे से लेकर शाम तक किसी को धन, किसी को दौलत, किसी को पैसा, किसी को मकान, किसी को कुछ चाहिए और यही हमारी लाइफ चली जाती है। आप देखो, आज लोगों को कहते हैं कि एक क्षण है आपके पास अध्यात्म सीखने के लिए, वो कहेंगे जल्दी जल्दी बताइए। हम लोग मेडिटेशन भी सीखने आए हैं तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि 3 दिन में हम लोग अपने जीवन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दें और फिर वहीं जाकर हम लोग रेस के अंदर लग जाएं। आप बताइए, आप लोगों ने जब सबको सुना, कल से स्पीकर्स को सुना, आज मॉर्निंग में भी सुना, अभी भी सुन रहे हैं, कल तक भी सुनेंगे, तो अंदर से मोटिवेशन आता है या नहीं? यस और नो बताइए। ऐसा लगता है ना, सब कुछ कितना ईजी है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो ईजी को हम प्रैक्टिकल में कब परिवर्तित कर पाएंगे? उस इजी को हम यथार्थ स्वरूप कब दे पाएंगे? जब हम अपनी जिंदगी में ब्रेक लगाना सीखेंगे, जब हम अपने मन को समय देंगे, जब हम अपने मन को थोड़ा टाइम देंगे। एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, वो एक महात्मा के पास गया और उससे जाकर बोला कि मुझे मेडिटेशन सीखनी है, मैं जिंदगी में सब कुछ अचीव कर चुका हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आप मुझे 10 मिनट में मेडिटेशन सिखाइए। तो उसने कहा, ठीक है, मैं आपको 10 मिनट में मेडिटेशन सिखाता हूं, आप आइए अंदर बैठिए, एक कप चाय लेंगे? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं लूंगा। तो उस महात्मा ने एक चाय का कप रखा, उसमें चाय डाली। चाय डालकर जैसे ही वो डालता जा रहा था, बात कर रहा था प्रोफेसर से, तो चाय का कप भर गया, वो टेबल पर गिरी, टेबल से निकल के जमीन पर गिरी और बहने लगी। तो प्रोफेसर बोलने लगा कि अजीब महात्मा है, ये देख नहीं रहा कि ये कप तो ऑलरेडी फुल है, इसके अंदर फिर भी डाले जा रहा है। तो महात्मा मुस्कुराते हुए उनसे बोला कि प्रोफेसर साहब, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप यहां पर सब आए तो हमारा मन ऑलरेडी इतनी सारी चीजों से भरा हुआ है कि हम कुछ नई चीज डालेंगे तो वो उसके अंदर रुकेगा ही नहीं। तो उसको डालने के लिए सबसे पहले मुझे अपने मन को डीक्लटर करना पड़ेगा। जब कंप्यूटर स्लो चलता है, जब मोबाइल स्लो चलता है, तो कंप्यूटर को हम क्या करते हैं? रिसाइकल बिन को क्या करते हैं? क्या करते हैं? वेस्ट फाइल्स को डिलीट करते हैं या नहीं करते? बताइए। नेचुरली हम लोग वेस्ट फाइल्स को डिलीट करते हैं। इसी तरह यहां पर जब हम अपने मन को नेचुरली हल्का करता जाएंगे, जब हम अपने मन के अंदर से नेगेटिव चीजों को हटाते जाएंगे मेडिटेशन के द्वारा, तो स्वतः ऑटोमेटिक हमारे मन के अंदर, जो कि एक कंप्यूटर प्लेट है, उसके अंदर ये ज्ञान ऑटोमेटिकली धारण होने लगेगा। लेकिन ये एक डेली और नेचुरल प्रैक्टिस है, ये वन डे प्रैक्टिस नहीं है कि एक बारी में sudden transformation aa jaye. We keep on doing it and it will automatically start deleting all the negative files from its system aur positive energy aur positive files hamari life ke andar aati jayengi. To ye hamari zindagi ki pehli sachchai hai ki life is not a, zor se boliye, life is not a. To aaj ke baad jab hum apne karyasthan mein jate hain to kya hum ek dusre ke sath, अपने परिवार वालों के साथ, अपने प्रोफेशनल मित्रों के साथ भी रेस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, बताइए? नहीं लगाएंगे. जैसे ही हम रेस से बाहर आते हैं तो मेरा मन ऑटोमेटिकली कंफर्ट लेवल पर आने लगता है. क्यों? क्योंकि हम लोग सब साथ आ जाते हैं. वी गेट अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस. जीवन की दूसरी सच्चाई जो हमारे समक्ष है, वो दूसरी सच्चाई बहुत सुंदर है कि हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज अलोंग द जर्नी. अब मैं आपको बहुत सुंदर बात बताता हूं. एक बात आप सब देखकर मेरी तरफ बताइए कि जब हम लोग यहां से पिकनिक जाने के लिए हमने डिसाइड किया, जब हम लोगों ने डिसाइड किया, तो क्या ये मैटर करता था कि हम कहां जा रहे हैं या ये मैटर करता था कि हम सब लोग साथ जा रहे हैं? बताइए, सब लोग साथ जा रहे हैं. दैट इज वाई, ध्यान से सुनिएगा, दैट इज वाई जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं एरोप्लेन से, जब हम ट्रेन से जाते हैं, तो क्या लिखा होता है वहां पर? कभी ये लिखा होता है कि हैव अ वेरी प्लेजेंट डेस्टिनेशन या ले लिखा होता है हैव अ वेरी प्लेजेंट जर्नी? बताइए. दैट एक्सप्लेन्स द ट्रूथ ऑफ अवर लाइफ. कभी भी डेस्टिनेशन डज नॉट मैटर इन अवर लाइफ एट ऑल. What matters is ki are we enjoying the journey which is giving us a feeling of togetherness. Jab hum yahan se ja rahe the to hum ek dusre ko jante bhi nahi the, lekin sab logon ne by choice khade hokar taali bajayi ki hum sab log saath ja rahe hain, hum sab log mitr banayenge, hum sab log ek dusre ke saath khayenge, hum log enjoy karenge. That is why जिंदगी की इस रेस के अंदर अगर हम सब लोग साथ होते हैं तो इसके लिए बहुत सुंदर शब्द कहा गया है कि when I is replaced by we, when I is replaced by we, even illness becomes wellness. हमारी जिंदगी में जो हमारा स्वास्थ्य जो होता है, जो हमारी बीमारी होती है, जब हम लोग साथ होते हैं तो वो बीमारी भी खत्म हो जाती है. That is why जब एक मरीज डॉक्टर के पास आता है, वो उसको दवाई देता है, वो दवाई से पहले, वो दवाई तो बाद में देगा, लेकिन जब मरीज बोलता है कि इस व्यक्ति से बात करके मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती है, वो क्यों होती है? क्योंकि हम अपने मन से मानसिक एनर्जी, मेंटल पॉजिटिव एनर्जी, हम उसको एमिट करते हैं. ये शारीरिक बात नहीं है, ये गोली की बात नहीं है, लेकिन जब मेरे माइंड से उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, मेरे माइंड से उसके लिए कंस्ट्रक्टिव एनर्जी निकलती है, उसके लिए दुआओं की एनर्जी निकलती है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी वो कैच करके हीलिंग वाइब्रेशंस अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है. जब वो हीलिंग वाइब्रेशंस मेरे अंदर आती हैं तो दवाई लेने से पहले ही उसकी हीलिंग आरंभ हो जाती है. That is why it is so much important today that we move together in our life. Life ke andar jo khushi hai, jo enjoyment hai, wo kal nahi aayegi. Happiness in our journey is here, is right now, is there in this moment. Wo hamare is samay ke andar hai. अगर हम सोचेंगे तो हम अपना ही प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं कि जब हम सोचते थे हम एमबीबीएस करेंगे तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम बहुत खुश होंगे, बट जब एमबीबीएस खत्म हुई तो रियलाइज हुआ कि एमडी का पहाड़ सामने है. फिर एमडी खत्म हुई, हमने सोचा अब हम बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, अब फिजिशियन एमडी मेडिसिन भी लग गया नाम में, फिर हमें लगा कि अब तो और आगे बढ़ना है, अब एक और पहाड़ आगे है, फिर खुशी गायब हो गई. तो हमने उसके बाद फिर कार्डियोलॉजी की, सुपर स्पेशलिटी की, हमने सोचा अब सब कुछ अचीव किया, अब हमारी लाइफ में अचीवमेंट आ जाता है, पर वो खत्म हुई, फिर आगे अ लाइफ, अ सी ऑफ अनसर्टेनिटीज हमारे सामने आता जाता है. और यही हमारी जिंदगी की एक कहानी है. तो अगर हम सोचें कि एक क्षण हमारी जिंदगी में आएगा कि हम खुश हो जाएंगे, तो वो क्षण कभी नहीं आएगा. वो क्षण इस समय ही है, राइट हेयर राइट नाउ. दैट इज वाई इफ वी वॉन्ट टू एंजॉय, हैप्पीनेस इज हेयर, हैप्पीनेस इज अ मैटर ऑफ चॉइस, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन. तभी किसी ने बहुत सुंदर रूप से कहा है कि यदि راستہ خوبصورت ہو تو پتا کرو کس منزل کی اور جاتا ہے، لیکن منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ مت کرو، نکل پڑو، منزل پر ضرور پہنچ جاؤ گے. اور اس منزل پر اگر ہم سب لوگ ساتھ چلتے ہیں تو اس جرنی کا آنند اور ہی آئے گا. آئے گا یا نہیں بتائیے، یس اور نو؟ اگر ہم لوگ آپ کو اکیلے بھیج دیں کہ جائیے سوئٹزرلینڈ اکیلے گھومائیے، اس کا مزہ نہیں آئے گا. لیکن ہم لوگ اگر یہیں سے کسی پاس چھوٹی سی جگہ پر جا کر اپنے پریوار کے ساتھ جاتے ہیں تو اس کا انجوائمنٹ، اس کا سینس آف جوائے، اس کا بلس الگ ہی ہوتا ہے. اسی کا دوسرا پارٹ جو ٹروتھ آتا ہے وہ ہے کہ ہیپینس ڈز ناٹ ڈپینڈ آن ہاؤ مچ وی ہیو، اٹ ریزلٹس فرام ہاؤ سیٹسفائڈ وی آر. جیون میں سب کچھ ہونا ہمارے لیے آوشک نہیں ہے. ہمارے جیون کی یاترا کے اندر ہم لوگ اکثر میٹلسٹک ٹریجرز کے پیچھے جاتے ہیں، بھوتکتا کے پیچھے جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے ہم لوگ یہ غریب بچے بھی ہیں، لیکن شاید غریب ویکتی اتنا زیادہ خوش ہے جتنا ایک امیر ویکتی بھی نہیں خوش ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں بھگوان کے مندر میں بھی جا کے امیر ویکتی، کروڑوں کی ویکتی، کروڑوں کا جو دھن دولت رکھنے والا ویکتی بھی ہے، وہ بھگوان کے مندر میں جا کے پیسہ چڑھاتا ہے اور بھگوان سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے اور پیسہ دو. وہ کیا مانگتا ہے کہ ہے پربھو، آج کے جیون کے اندر مجھے دو پل کی شانتی، دو پل کا پیار، جیون کے اندر دو پل کے سکھ ضرور دو. اینڈ دیٹ از وائی وی انڈرسٹینڈ کہ پیس ان اور لائف، happiness in our life, can it be bought by money? Yes or no? It cannot be bought by money. These are our innate treasures. ye hamare andar ke gun, hamare andar ki manyataye hain. That is why aaj jab hum log jate hain, بڑی بڑی جگہ پر جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں خریدتے ہیں، اچھی گھڑی خریدتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بڑھیا گاڑی خریدتے ہیں، تو ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. آج کل یوتھ کا زمانہ ہے، ویکینڈ پر جائیں گے، اپنی خوشی کے لیے ہم لوگ اچھے اچھے نئی پکچرز جائیں گے، ہم لوگ نئے کپڑے لیں گے اور اس سے ہم لوگ خوشی ڈرائیو کرتے ہیں. تو اچھے کپڑے پہننا، اچھی گھڑی پہننا، اچھی گاڑی چلانا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ہمیں لینا چاہیے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے، جب ہم لوگوں نے ایک بڑھیا سی گھڑی خریدی، ہم لوگوں نے ایک نئی ڈریس پہنی، اور جیسے ہی ہم ڈریس پہن کر باہر آئے، کسی ویکتی نے اس پر ایک نشان لگا دیا، اس پر ایک نشان لگا دیا یا انک کا سپاٹ لگ گیا، تو ہماری خوشی کو کیا ہوگا بتائیے؟ سبھی لوگ کیا ہوگا، رہے گی یا غائب ہو جائے گی؟ نہ کیول غائب ہو جائے گی، ابھی جیسے آپ سن رہے تھے من میں غصہ آئے گا. ہاں، دوسرے ویکتی کے لیے کیا آئے گا؟ ایک دم کرودھ آتا ہے کہ کیا کیا اس نے، اور میرے کو ایک دم ایسا لگتا ہے میری ڈریس کا کیا ہوا. اسی طرح جب نئی گاڑی لے کر ہم لوگ شو روم سے نکلے اور سیکنڈ ڈے پر کسی نے اس پر ایک سکریچ لگا دیا، تو گاڑی پر سکریچ بعد میں لگے گا، پہلے سکریچ کہاں پہ لگتا ہے؟ پہلے ہمارے دل پر لگ جاتا ہے. تو ہم نے کیا کیا، اپنی خوشی کو ہم نے کس میں ڈالا، ہم نے خوشی کو گاڑی میں ڈال دیا، ہم نے اپنی خوشی کو اپنے کپڑوں میں ڈال دیا. تو کیا ایسا کرنا، اپنی خوشی کو گاڑی میں، اپنی خوشی کا آدھار اپنے کپڑوں کو بنانا، یہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ آپ بتائیے. ان کو پہننا غلط نہیں تھا، اچھی گاڑی چلانا غلط بالکل نہیں تھا، لیکن اپنے جیون کی خوشی کا آدھار، میٹرلسٹک ٹریجرز کو بلا لینا کہ اگر میرے پاس یہ ہوگا تو میں خوش ہوں گا، وہ غلط تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر میں اپنے جیون کی خوشی کا آدھار میٹرلسٹک ٹریجرز کو بنا لیتا ہوں، تو اگر آج میں مرسڈیز خریدتا ہوں یا اگر اپنے پاس میں آج ہونڈا خریدتا ہوں، تو کل میں اپنی خوشی کا آدھار کس کو بناؤں گا؟ اس سے اوپر کی چیز کو بناؤں گا. اور جب وہ چیز وہاں سے چلی جائے گی تو وہ نہ کیول جائے گی، وہ کیا لے جائے گی؟ میری خوشی کا بھی جو پورا ایسنس ہے وہ لے جائے گی. اور خوشی کس کی تھی؟ میری تھی، میری اپنی پراپرٹی تھی، لیکن میں نے اس کا ریموٹ کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا اور میری خوشی غائب ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جیون ہماری ایک ریس نہیں، اور اگر خوشی ہے تو جو کچھ میرے پاس اس سمے ہے وہ میری خوشی کا آدھار نہیں، خوشی کا آدھار کیول میرے من کی استھتی ہے. अगर मेरा मन खुश है, आप देखते ना यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितने भाई यहाँ पर आप देखेंगे, ये बहन है यहाँ पर, ये बैठे हैं ऊपर, ट्रांसलेट करने वाले बैठे हैं, अंदर रिकॉर्डिंग्स वाले बैठे हैं, बाहर आपके सर्विस के लिए पानी पिलाने वाले बैठे हैं, उनके पास एक पैसा भी नहीं है, उनके पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, सिंपल कपड़े पहनते हैं, लेकिन आज उनके पास खुशी का खजाना हमसे ज्यादा है या नहीं बताइए? है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी खुशी का आधार किसी भौतिक प्राप्ति को नहीं बनाया, उन्होंने अपनी खुशी का आधार परमात्मिक याद को बनाया है, और वही हमारे जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का एसेंस है। जीवन का तीसरा सत्य जो हमारे समक्ष में आपको रखना चाहूंगा, वो बहुत सुंदर शब्द है कि आज हमारा जीवन जो है वो हाईटेक तो बन चुका है। आज हमारे पास बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े रिमोट कंट्रोल्स हैं, बड़े बड़े मोबाइल फोन्स हैं, अप्लायंसेस हैं, लेकिन हाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ आज हमारे जीवन के अंदर हाई टच जो है वो खत्म हो गया है। आप देखो कि जब हम बीमार होते हैं, जब हमको किसी व्यक्ति की अपने जीवन में आवश्यकता होती है, तो हम लोग बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में भी हों, लेकिन उस समय क्या हम डॉक्टर की अपेक्षा ज्यादा करते हैं, या हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ हमारे फैमिली मेंबर्स हों वो भी हमारे साथ अराउंड पर हों? बताइए आप लोग। नेचुरली हम लोग जीवन में अपेक्षा रखते हैं कि कोई हमारा केयर करने वाला हो। दैट इज व्हाई टेक्नोलॉजी से भी ऊपर, साइंस से भी ऊपर आज हमारी लाइफ के अंदर टच और कंपैशन है। लेकिन आज हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं वो कंपैशन जो है वो खत्म हो गया है, या वो एक मेटलिस्टिक ट्रेजर्स का एक भौतिक रूप ले चुका है, या एक स्वार्थ का रूप हमारे जीवन में ले चुका है। मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल स्टोरी बताता हूं कि एक बारी क्या हुआ, जब मोबाइल पहली बार इस जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर बनाया गया, तो आपने देखा फर्स्ट मोबाइल जो आए थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, है ना, एरिक्सन के मोबाइल थे और दूसरे मोबाइल थे। जब वो मोबाइल शुरू के अंदर आए थे तो बड़े मोबाइल, उनकी बैटरी लाइफ होती थी एक एक हफ्ता, चार दिन, दस दिन, बारह दिन, एक बारी आप चला दें वो चलते रहते थे, केवल बात करने के काम आते थे। लेकिन जैसे जैसे वो मोबाइल इवॉल्व होते गए, उन मोबाइल के अंदर नए नए फीचर्स आए, उस मोबाइल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, स्मार्ट फोन्स रख दिया गया। उसके साथ पहले उसके अंदर ईमेल ऐड हुआ, फेसबुक ऐड हुआ, इंटरनेट ऐड हुआ, मैसेजिंग ऐड हुआ, व्हाट्सएप ऐड हुआ, और वो मोबाइल फोन छोटे बदलकर स्मार्टफोन्स में चेंज हो गए। लेकिन जैसे जैसे वो मोबाइल फोन का आकार छोटा हुआ, उनकी स्मार्टनेस इंक्रीज होती गई, तो उनकी बैटरी लाइफ जो 14 दिन 7 दिन होती थी, उस बैटरी लाइफ को क्या हुआ, आज क्या हुआ, सभी बताइए क्या हुआ, बढ़ी उतनी रही, कम हो गई, कम हो गई, इतनी कम हो गई कि आज मोबाइल फोन्स को जब हम चार्ज करके घर में निकलते हैं तो हमको डर होता है कि वो मोबाइल फोन की बैटरी खत्म ना हो जाए, तो एक चार्जर हम लोग कहाँ रखते हैं, अपने ऑफिस में भी रखते हैं। फिर अब जब हम लोग इतने एडिक्टेड उस मोबाइल फोन के हो गए कि जब हम जा रहे हैं तो हमें लगा कि गाड़ी में भी बैटरी कम नहीं होनी चाहिए, तो एक चार्जर हमारा गाड़ी में भी होता है। फिर कई लोगों को इसी से भी शांति नहीं मिली, तो उनको लगा जब हम लोग मीटिंग्स में जाते हैं तो घर में हैं, गाड़ी में हैं, ऑफिस में हैं, लेकिन कहीं जेब में रखा रखा डिस्चार्ज ना हो जाए, तो स्मार्टफोन के साथ आजकल एक पोर्टेबल चार्जर भी आता है, उसे भी हम लोग अपने साथ लेकर चलते हैं। और यही हालत आप देखो हम ह्यूमन बीइंग्स की भी हो गई। आज से 20 साल पहले जब हमारी लाइफ बहुत सिंपलिस्टिक थी, हमारी लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, तो हम लोग अपनी लाइफ में एंजॉय करते थे। स्पोर्ट्स का मतलब होता था हम लोग बाहर जाते थे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे। घूमने का मतलब होता था मॉल्स नहीं, घूमने का मतलब होता था एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर, घर में खाना बनाया, गार्डन में जाकर हम लोग एक दूसरे के साथ बात करें। लेकिन ऐसे ऐसे आज ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व होकर स्मार्ट ह्यूमन बीइंग्स हो गए, तो हमारी एनर्जी लेवल को क्या हुआ, हमारी मानसिक एनर्जी लेवल को क्या हुआ, उतनी रही या कम हो गई बताइए? कम हुई, और कम इतनी हो गई कि आज हम लोग यहां पर अपने मन की एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग अपने आप को चार्ज करना चाहते हैं, तो आज बहुत आवश्यक है कि हम लोग अपने आप को इस रेस से इमीडिएटली बाहर ले आए, अपने जीवन के अंदर जो है उससे संतुष्ट रहें और अच्छे के लिए पुरुषार्थ करें, लेकिन अपने जीवन के अंदर लालच को ना लाएं। अपने जीवन की खुशी का आधार अपने मेटलिस्टिक ट्रेजर्स को ना बनाएं, अपने जीवन की खुशी का आधार का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अपने मन की एनर्जी को हम लोग रिचार्ज जरूर करें। तो ये हमारे जीवन के तीन सत्य थे, और तीन ट्रांसफॉर्मेशंस, तीन परिवर्तन जो हमें अपने जीवन के अंदर करने हैं वो मैं आपको बहुत संक्षेप में बताता हूं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा निर्देश देंगे। एक बारी क्या हुआ कि एक क्लास के अंदर बच्चे आपस में लड़ते रहते थे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मास्टर जी एक दिन परेशान हो गए, उन्होंने सारे बच्चों को अपनी तरफ बुलाया और उनसे कहा कि अब आप लोग एक काम करो, आप लोग जब मेरे अगले दिन पढ़ने के लिए आओगे तो एक खाली थैला लेकर आना। तो बच्चे खाली थैला लेकर आए, तो उस मास्टर जी ने उनसे कहा कि आप लोग आपस में लड़ते हो, कहते हो इसने मेरे को बुरा कहा, मास्टर जी ये ऐसा करता है। अब जिस जिससे आपको लड़ाई होती है, आपको लगता है मेरे को एक बच्चा परेशान करता है, दो करते हैं, तीन करते हैं, उतना अपने खाली थैले के अंदर आलू आप डाल लो। तो सब बच्चों ने लिया, किसी ने एक आलू डाला, किसी ने दो डालिए, किसी ने पांच आलू डाल लिए। किसी को लगा पांच लोग मुझे परेशान करते हैं, उसने पांच आलू डाले। मास्टर जी ने उनसे कहा कि अब आपको एक कार्य करना है, इस थैले को जिसमें किसी के पास एक, किसी के पास पांच, किसी के पास आठ आलू हैं, आपको सदा इसे अपने पास रखना है, रोज यहां पर स्कूल के अंदर लेकर आना है, जहां पर भी जाएंगे, खेलने भी जाएंगे तो भी इसको कैरी करना है। तो बच्चों ने कहा ठीक है हम कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन बीत गए। छठे दिन जब वो स्कूल पर आए तो उनके थैलों में से बदबू आ रही थी, जिसके पास आठ आलू थे उसमें से ज्यादा बदबू आ रही थी, हाँ जिसके पास पांच थे उसमें से कम, लेकिन आज सबके थैले में से रही थी, इतनी आ रही थी कि उनसे सहन नहीं हो रहा था। पर मास्टर जी ने कहा आपको चलना पड़ेगा। दो दिन और बीते तो उनसे आलू इतनी बदबू सहन नहीं हुई और पूरे क्लासरूम के अंदर फैल गई। तो उन्होंने कहा मास्टर जी अब हमसे सहन नहीं होता, आप प्लीज हमें समझाओ, ये हम बाहर निकालकर रख रहे हैं। तो मास्टर जी ने कहा कि आप देखो जब आपने अपने पास पांच आलू रखे तो आपको पांच लोगों से घृणा थी, और जिसके पास जितने ज्यादा आलू थे उतनी ज्यादा बदबू उसको आ रही थी या नहीं आ रही थी, नेचुरली आ रही थी। तो इसी तरह अपने जीवन के अंदर हम जितने ज्यादा लोगों की बात अपने मन में रखेंगे उतनी ज्यादा नफरत, इतनी ज्यादा घृणा हमारे अपने अंदर आती जाएगी। मैं आप लोगों से पूछता हूं एक बात कि अगर आपके जीवन के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने आपको बहुत बुरा कहा हो, जिसने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया हो, आज से पांच साल पहले, हो सकता है आज से दस साल पहले, हो सकता है आज से पंद्रह साल पहले, और सडनली आज वो व्यक्ति आपको यहां पर मिल जाता है, तो आप ऑनेस्टली बताइएगा कि क्या आपको देखकर उसके लिए क्षमा भाव निकलेगा या सबसे पहले उसके लिए गुस्सा आएगा? बताइए, ऑनेस्टली बताइए सभी लोग, क्या आता है? गुस्सा आता है, नेचुरली गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम लोग क्या कैरी कर रहे हैं, जोर से बताइए, क्या कैरी कर रहे हैं? आलू, बोलिए ना, हम लोग क्या कैरी कर रहे हैं? आलू कैरी कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कौन कौन कितने कितने आलू कैरी कर रहे हैं? कितने कितने आलू कैरी कर रहे हैं? कोई आधा किलो, कोई एक किलो, हाँ कोई क्विंटल क्विंटल कैरी करे जा रहा है। हर एक के लिए मन के अंदर ग्रजेस रखी हुई है, जो भी आए ये भी खराब है, वो भी खराब है, हर एक के लिए। अच्छा उसकी बदबू किसको आती है? पहले मुझे आ रही है, दूसरे व्यक्ति को आ रही है? सवेरे से हम सुन रहे हैं, कैन आई दी स्लाइड्स प्लीज, कि जो भी हमारा दिल जो है वो इतना सुंदर मंदिर है, अगर हम इस दिल के अंदर नफरत की भाव रखेंगे, अगर हम दिल के अंदर किसी के लिए ईर्ष्या या द्वेष रखेंगे तो क्या होगा? हमारे मन के अंदर से, हमारे दिल के अंदर से हर एक के लिए ईर्ष्या और द्वेष की भावना निकलती जाएगी। तो सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो हमको करनी है कि क्या ऐसा आलू जैसे वह व्यक्ति कैरी कर रहा है हम आज के बाद किसी के लिए कैरी करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ या नहीं बताइए सभी, नहीं कैरी करेंगे। अगर हम लोग किसी के लिए भी नफरत की भावना, घृणा की भावना कैरी करेंगे तो आप जितना भी एफर्ट लगा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में असंभव है। अगर आज हम लोग कोई भी लेक्चर सुनकर चेंज होना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे अपने मन को, जो मन जिसने सारी चीजों को धारण करना है, जो इस सब चीज का आधार है, उसके अंदर हमको क्षमा भाव लाना होगा। अगर मैं अपने मन के अंदर से उस आलू को, उस नेगेटिव भावना को हटाना चाहता हूं, तो उस व्यक्ति को मुझे क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा?
क्षमा करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा। क्यों? तभी किसी ने कहा है कि जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया, किसी को माफ कर दिया। तो आज कोई भी बात कैसी भी हो, अपने मन से हर एक व्यक्ति के लिए घृणा भाव निकाल दीजिए। आप कुछ भी अच्छा धारण करना चाहते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे किसी भी प्रकार की हमारी लाइफ हो, हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि क्षमा करिए। जैसे ही आप क्षमा करेंगे ना, आप देखेंगे आपका दिल हल्का हो जाएगा, आपका दिल लाइट होता जाएगा। और आगे हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज जो हमको बहुत सुंदर कहना है, दी स्लाइड्स प्लीज करनी चाहिए, वो बहुत सुंदर एक्सरसाइज है कि समय हमको हर एक को देना है। आज हम लोग अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। फिर हम लोग कंप्लेन करते हैं कि वो हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, माँ बाप बच्चों की बात नहीं सुनते, फिर बच्चे उनके पास जाकर अपनी बातों का इजहार करते हैं, जो उनकी बात सुनते हैं उनके मित्र होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ उनकी इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप होती जाती है। और जैसे जैसे उधर इमोशनल बॉन्डिंग होगी तो इमोशनल डिस्कनेक्ट फैमिली के साथ होता है। तो आज बहुत आवश्यक है कि आज हम अपने बच्चों को अपना समय, अपना प्यार जरूर दें। आप मुझे बताइए कि हमारे जीवन के अंदर किसी भी रिलेशन का आधार जरूरत होता है, डर होता है या प्यार होता है? आप बताइए क्या आधार होगा? प्यार आधार होगा। अगर मेरे जीवन के अंदर मेरे बच्चों के साथ, मेरे माँ बाप के साथ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर प्यार है, तो मेरे जीवन के अंदर सब कुछ है, मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पर प्यार होता है वहां पर विश्वास हमेशा होता ही है। जहां पर आपका प्यार होता है वहां पे विश्वास हमेशा होता ही है, और जहां विश्वास होता है वहां अधिकार हमेशा होता है, और यही हमारा परमात्मा के साथ रिलेशंस का अधिकार का फाउंडेशन भी है। आप देखेंगे हमारे जीवन का जो आखिरी सत्य और आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन है कि हम लोग स्पिरिचुअल वेकेशन पर जाएं। हम लोग यहाँ पर जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं उसका मूल आधार, उसका जो मूल सत्य, मूल बेसिस है वह यही है कि यहाँ पर जो ज्ञान सुनाने वाला है वो ज्ञान सूर्य स्वयं परम पिता शिव परमात्मा है। ये ज्ञान सूर्य जो है अपनी ज्ञान गंगाओं के द्वारा आपको ज्ञान देता है। जैसे आप देखेंगे कि हम लोग जब किसी व्यक्ति को मानते हैं, किसी व्यक्ति को उपाधि देते हैं, तो हम उसको देवात्मा कहते हैं, हम उसको महात्मा कहते हैं, हम उसको पुण्य आत्मा कहते हैं, कहते हैं नहीं? सभी लोग बताइए हाँ या नहीं। हमेशा हम किसी भी व्यक्ति को कभी महान शरीर, पुण्य शरीर या देव शरीर नहीं कहते। तो इसी तरह जब हम सब लोग इस बात को मानते हैं, इसको समझते हैं कि पुण्य आत्मा, पुण्य शरीर नहीं कहा जाता, पुण्य आत्मा कहा जाता है, इसी तरह हम सब का पिता स्वयं परम पिता परम शरीर नहीं, परम पिता परम कौन होगा? आत्मा होगा। जब वो हम सबका पिता परम शरीर नहीं परम आत्मा होगा, तो हम उसकी संतान क्या होंगे? शरीर होंगे या आत्मा? बताइए आत्मा। तो इसका बड़ा बेसिक लॉजिकल और साइंटिफिक एविडेंस आज हमारे सामने आता है। आज हमारे समक्ष कठिनाइयां इसलिए आती हैं कि आज हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे अलग अलग जाकर परमात्मा से प्यार की और किसी चीज की भीख मांगते हैं, लेकिन वो जब हमारा पिता है तो पिता का पुत्र के साथ, बच्चे के साथ क्या रिलेशन होगा? प्यार का आधार होगा। तो आज हम लोग यहाँ पर यदि यह ज्ञान समझते हुए प्रण लें और समझें इस बात को कि परम पिता परमात्मा मेरा पिता है, मेरा स्वयं मेरा पिता है, तो मुझे उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे ऑटोमेटिक मेडिटेशन, उससे ऑटोमेटिक प्यार भरा कनेक्शन मेरा मेरा पिता से जुड़ जाता है, और यही कम्युनियन मेडिटेशन कहा जाता है। इट्स अ लविंग एंड अ इंटेलेक्चुअल कम्युनियन। लविंग क्योंकि
क्योंकि प्यार के आधार पर है, और इंटेलेक्चुअल क्योंकि ये समझ के आधार पर है। ज्ञान जो आपको मिलता है वो आपको समझ देता है, और प्यार उसके बेसिस पे हमारा उससे रिश्ता बनता है, तो हम उससे कनेक्शन जोड़ सकते हैं। एक बार एक एरोप्लेन जा रहा था, तो एरोप्लेन जब जा रहा था तो उसमें एक छोटी बच्ची वीडियो गेम खेल रही थी, तो तभी एरोप्लेन बहुत टर्बुलेंट होने लगा, एकदम ऐसे लगा कि जैसे गिर जाएगा, तो सब लोग परमात्मा को याद करने लगे। तो एक महात्मा ने उस बच्ची को बोला कि बेटा तुम अभी भी वीडियो गेम खेल रही हो, तुम देख नहीं रहे कि ये तो परमात्मा को याद करने का टाइम है, एरोप्लेन हिल रहा है, ये कहीं गिर ना जाए। तो बच्ची मुस्कुराते हुए अपना वीडियो गेम साइड में रखा और बोली कि अंकल मैं आपको बताती हूँ कि इस एरोप्लेन के जो पायलट हैं वो मेरे पिता हैं, और मुझे पता है कि वो इस तूफान से ना केवल मुझे, हम सब लोगों को बहुत सहज रूप से पार लगा देंगे, और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए ताकि हम लोग भी जब उतरेंगे तो ना केवल मैं अपने पिता का हाथ पकड़कर सेफली घर जाऊंगी, आप लोग भी सेफली घर जाएंगे। तो हमारे इस ज्ञान का आधार यही है कि हम लोग, केवल एक डिफरेंस है कि हम लोग परमात्मा को यथार्थ रूप से समझकर उसको स्पेयर व्हील की तरह यूज नहीं करते, जैसे सब लोग करते हैं ना, जरूरत हुई या परमात्मा का डर है तो याद आ गई, हे परमात्मा क्या करा, हे पिता मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे ऐसा करो, मैंने मन्नत मांगी, मैंने उपवास रखे, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, नहीं, ये हुआ स्टेयरिंग व्हील की तरह यूज करना, जैसे ही गाड़ी पंक्चर हुई पीछे से टायर लाए, फिट कर दिया, काम हुआ, फिर वापस लाके उसको रख दिया। परमात्मा कहते हैं स्टीयरिंग व्हील है, कभी कभी काम में आऊंगा, लेकिन हम लोग ब्रह्मा कुमारी इसमें क्या बोलते हैं कि परमात्मा को स्पेयर व्हील की तरह नहीं, स्टीयरिंग व्हील की तरह अपनी लाइफ में यूज करो। जब आप परमात्मा को, जिस व्यक्ति की, जिस आत्मा का खिवैया स्वयं परम पिता परमात्मा है, तो उसकी नैया हिलेगी और डुलेगी, लेकिन डूब सकती है नहीं डूब सकती, कभी नहीं डूब सकती। यही प्यार का आधार हमने परमात्मा को अपने जीवन के अंदर बनाया है। कैन आई हैव दी स्लाइड प्लीज। तो मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी बेसिस, ये सारे ज्ञान जो आप डेढ़ दिन यहां पर हैं, इसके डेप्थ के अंदर जाकर इसको अपने जीवन में समझकर धारण करिए। जो छोटी छोटी अलग अलग स्पीकर्स आपके समक्ष डिफरेंट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव्स रखेंगे कि अपने आप को आत्मा समझकर दूसरे को भी प्योर सोल देखना है, अपने आप को चेंज करके दूसरे को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा व्यक्ति चेंज होता जाएगा। इन सब का केवल एक आधार है कि अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना और उस आत्मा को चार्ज करने के लिए परमात्मा से कम्यून करना। तो इस जर्नी का आरंभ आपका यहाँ पर होता है। मेरे पास समय कम था, लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपके समक्ष केवल यही एक अपेक्षा भी रखता हूँ, आपसे प्रार्थना भी करता हूँ कि केवल परमात्मा को मतलब के कारण याद मत करिए, उसको अपने जीवन में आने दीजिए। परमात्म शक्ति जब आपके जीवन में आती है तो आपका जीवन जो है वो अनुभव युक्त ऐसा बन जाता है कि आप कहेंगे वो अच्छा बोलता है, ये बोलता है। मैं अपेक्षा रखता हूं कि शायद आप लोगों में से ही बहुत सारे स्पीकर्स अगले साल की माइंड बॉडी मेडिसिन के अंदर यहां खड़े होकर अपना एक्सपीरियंस उस परमपिता परमात्मा के साथ दूसरे ग्रुप के आगे रख रहे होंगे, क्योंकि गॉड इज अ बिगेस्ट मैजिशियन इन दिस वर्ल्ड। तो आप उसको अपने जीवन में आने दीजिए। तो ऐसे परमात्म प्यार का अनुभव आप अपने जीवन में करना चाहेंगे या नहीं, बताइए, हाँ या नहीं करना चाहेंगे? तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं और अपेक्षा रखता हूं कि आप अपने जीवन के अंदर परिवर्तन की अग्नि को आज ही ज्वलनशील करेंगे, अपने मन को सुमन बनाने के लिए ज्ञान की एक एक बूंद को अपने अंदर धारण करके उसका रस आस्वादन करेंगे। ओम शांति। थैंक यू फॉर अ वेरी पेशेंट। हम एक मिनट, बस आधा मिनट साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद हम दूसरे सेशन पर